नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।